दिन भर तारीख 21 अगस्त शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारत और पाकिस्तान की होने वाली बातचीत से पहले कश्मीरी नेताओं से मुलाकात पर फंसा पेच। भारत ने कहा नेताओं से मिलना उचित नहीं। पाकिस्तान ने कहा
इसमें कौन सी ऐसी खौफ की बात है कि अगर कोई मेरा मेहमान बन जाएगा तो हिंदुस्तान को डर लगता है, कोई किसी का मेजबान बन जाए तो हिंदुस्तान को डर लगता है।
लेकिन कुछ कश्मीरी नेताओं ने पाकिस्तानी दूतावास के निमंत्रण पर न जाने का लिया फैसला। याद करेंगे शहंशाह कव्वाल नुसरत फतेह अली खां को आज की विवेचना में।
खवातीनो हजरात, हम आपको इस महफिल कव्वाली में खुश आमदेद कहते हैं। उस्ताद नुसरत फतेह अली खां साहब आज हमारे सामने मौजूद हैं।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि सरताज अजीज़ का हुर्रियत प्रतिनिधियों से मिलना उचित नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि ऐसी मुलाकात उफा में जारी संयुक्त बयान की भावना के खिलाफ है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ साझा काम करने की बात की गई थी। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच 23 अगस्त को वार्ता होनी है। वहीं पाकिस्तान ने अलगाववादी नेताओं से नहीं मिलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ग्रीस की मुख्य विपक्षी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के प्रमुख वांगेलिस मेमार्किस ने कहा है कि वो नई गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मध्यावधि चुनाव कराने की जरूरत ना पड़े। ग्रीक राष्ट्रपति पार्कोपिस पावलोपुलोस ने प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास से इस्तीफे के बाद मेमार्किस को नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया था। इससे पहले सिरिजा पार्टी के 30 सांसदों ने नई पार्टी बनाने के इरादे से इस्तीफा दे दिया था। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के अनुसार नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया से सटी सीमा पर तैनात सैनिकों से युद्ध जैसे हालात पर तैयार रहने को कहा है। दक्षिण कोरिया के साथ हालिया गोलीबारी के बाद ये फैसला किया गया है। सरकारी एजेंसी KCNA के मुताबिक एक आपात बैठक में किम ने युद्ध जैसी स्थिति का ऐलान कर दिया है। किम ने चेतावनी दी कि अगर उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रसारण नहीं रोका जाता तो दक्षिण कोरिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीन में उत्तर कोरिया के राजदूत जी जे रियोंग ने कहा कि अगर दक्षिण कोरिया बात नहीं मानता है तो उसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा ये घटना साफ दर्शाती है कि हमारे दुश्मनों ने ये ड्रामा रचा है और वो उत्तर कोरिया को सैन्य उकसावे के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर दुश्मन हमारी आखिरी चेतावनी पर ध्यान नहीं देता है तो हम उनका जवाब देने को मजबूर हो जाएंगे। चीन में उत्तर कोरिया के राजदूत जी जे रियोंग। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी थी कि यदि उसने 48 घंटों के अंदर सीमा पर उसके खिलाफ होने वाला प्रसारण नहीं रोका और प्रसारण उपकरणों को वहां से नहीं हटाया तो वे उसके विरुद्ध जोरदार सैनिक कार्रवाई करेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को हुए रॉकेट हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। इसराइल पर गुरुवार को 4 रॉकेट आकर गिरे थे, लेकिन इसमें किसी की मौत नहीं हुई थी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई के रूप में इसराइल ने भी ईरान पर कई हमले किए, जिसमें 4 लोग मारे गए हैं। इसराइल का कहना है कि इस्लामिक जिहाद संगठन के चरमपंथियों ने यह हमला किया है, लेकिन संगठन ने इन आरोपों को नकार दिया है। मध्य प्रदेश का दामोह शहर देश का सबसे गंदा शहर माना गया है। शहरी विकास मंत्रालय ने देश भर में 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का सर्वे किया था, जिसमें ये परिणाम निकल आया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बैठक से पहले मचे बवाल पर। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में आज बैठकों का दौर जारी रहा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ ये बैठक 23 अगस्त को होनी थी और उससे पहले ये जो बवाल है ये मचा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सवेरे भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया था कि भारत ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि उसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज का हुर्रियत के प्रतिनिधियों से मिलना उचित नहीं होगा। विकास स्वरूप ने कहा
भारत ने कल पाकिस्तान को सलाह दी है कि श्री सरताज अजीज की भारत यात्रा के दौरान हुर्रियत के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मुलाकात उचित नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करना आतंकवाद से लड़ने हेतु मिलकर काम करने से संबंधित उफा समझौते की भावना तथा उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय वार्ता के लिए उस एजेंडे की भी अभिपुष्टि करनी चाहिए है जिसके बारे में 18 अगस्त 2015 को पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया।
ये थे विकास स्वरूप, जो कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। और अब से 3 मिनट पहले विकास स्वरूप ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा, यानी कि दोनों देशों के बीच ये जो बातचीत होने वाली थी ये कॉल ऑफ हो गई है। सामने मौजूद हैं फैसल मोहम्मद अली, इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। फैसल, अब से कुछ देर पहले विकास स्वरूप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और ये 3 मिनट पहले की घटना है, क्या कहा है और एजेंडा क्या बताया?
विकास स्वरूप ने कहा कि वूफा में जो बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर एक एजेंडे की बात हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने, पहली बात तो जब भारत ने इसका प्रपोजल रखा तो उसका जवाब देने में 22 दिन लगाए और उसके बाद जो उन्होंने एजेंडा किया वो बिल्कुल उस बात से अलग था जो कि यूफा में एग्री हुई थी जिस पे। साथ ही साथ उन्होंने हुर्रियत को, जो अब्दुल बासित जो यहाँ एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, उच्चायुक्त हैं, उन्होंने जो हुर्रियत कश्मीर के हुर्रियत नेता को बुलाया है, दावत दी, उसको प्रोवोकेटिव एक्शन बताया। और साथ साथ जो है वो ये कहा कि एनएसएस की जो बैठक होने वाली थी उसमें ऑल इश्यूज जो हैं वो टेररिज्म से, आतंकवाद से जो संबंधित थे, उसी पर बातचीत होनी है। लेकिन ये जो पाकिस्तान जो ये कर रहा है, इससे लगता है कि ये नहीं चाहता है कि बातचीत हो, और उन्होंने कहा कि ये बातचीत कॉल ऑफ हो गई है।
तो मतलब ये है कि ये जो अब बातचीत होने वाली थी ये अब फिलहाल नहीं,
सुरक्षा सलाहकारों के बीच जो बातचीत होने वाली थी। और एक ये भी बता दूं मोहनलाल कि पाकिस्तान में भी आज का दिन बड़ा ये रहा,
उठा पटक वाला रहा।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सरताज अजीज और राहिल शरीफ जो वहाँ के सेना प्रमुख हैं, इन सब की भी एक बैठक हुई जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, वो भारत की बात नहीं मानेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मोहम्मद अली। और जैसा कि फैसल आप बता रहे हैं कि जो बातचीत हुई, आज पाकिस्तान में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ जिसमें कि प्रधानमंत्री मौजूद थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद थे, और इस बैठक में कई बातचीत हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मैंने इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू सेवा के सहयोगी आसिफ फारूकी से कुछ देर पहले संपर्क साधा था और पूछा था कि बैठक में ये बातचीत क्या हुई है।
में दो मुद्दों पर बात हुई, एक तो भारत की तरफ से जो ये कहा गया कि तजवीज़ दी गई रादर के पाकिस्तानी कौमी सलामती के मुशीर जो हैं सरताज अजीज, वो जब दिल्ली आए तो वो कश्मीरी रहनुमाओं यानी हुर्रियत के लीडर्स के साथ वो मुलाकात ना करें, और दूसरा जो है उसमें इस मुलाकात जो होनी है दोनों मुल्कों देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनके दरमियान जो एजेंडा है मुलाकात का, उस पर बात हुई। और इन दोनों बातों पर काफ़ी तफसील से बात हुई जिसके बाद पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस जो है उसने रिएक्शन भी दिया, एक बयान जारी किया जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो ये बात किसी तरह मंजूर नहीं कर सकता कि सरताज अजीज कश्मीरी लीडर से मुलाकात ना करें। और उसके अलावा ये भी कहा गया कि जो दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनकी मीटिंग में जरूर कश्मीर के मुद्दे पर बात होगी बाकी मुद्दों के साथ साथ।
आसिफ फारूकी साहब, पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर परवेज रशीद, उन्होंने भी इस पर एक बयान जारी किया है, क्या कहा है उसमें?
बाद काफी थोड़ी सी माहौल गर्म हुआ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जब ये बयान जारी हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तानी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने बहुत वाजे तौर पर ये कहा कि भारत की तरफ से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वो शायद अब मुज़ाकरात जो हैं, जो टॉक्स हैं, उनसे भागना चाहता है। और परवेज रशीद का कहना था,
मुझे और सब लोगों को, कश्मीर के लोगों को भी ये हक हासिल है कि हम किसी की मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ हों, हम किसी को अपना मेहमान बनाएं, किसी के मेहमान बने। इसमें कौन सी ऐसी खौफ की बात है कि अगर कोई मेरा मेहमान बन जाएगा तो हिंदुस्तान को डर लगता है, कोई किसी का मेज़बान बन जाए तो हिंदुस्तान को डर लगता है, और कह रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुज़ाकरात ही नहीं हम करेंगे, अगर मेहमान आपके घर में कोई आ जाएगा आप किसी के मेज़बान बन जाएंगे।
अब तो ये सवाल भी सामने आ गया है, परवेज रशीद जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि भारत अगर कश्मीरियों को पाकिस्तानी लीडर से नहीं मिलने देगा तो हो सकता है ये टॉक्स फिर मुमकिन ही ना हो।
तो जैसा कि आसिफ फारूकी बता रहे थे कि शायद ये जो बातचीत है वो रुक जाए, और देखिए कुछ देर पहले यानी कि अब से करीब 10 मिनट पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि दोनों देशों के जो ये बीच बातचीत होने वाली थी सुरक्षा सलाहकारों के बीच में, ये बातचीत अब नहीं होगी। विकास स्वरूप ने कहा,
इंडिया हैज ऑलवेज हेल्ड द पोजीशन दैट देयर आर ओनली टू स्टेक होल्डर्स इन आवर रिलेशनशिप।
विकास स्वरूप कह रहे थे कि दोनों देशों के बीच में सिर्फ कई मुद्दे हैं, दोनों देशों के बीच में जो चरमपंथ का मुद्दा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके साथ साथ कई हमले जो उफा में जो समझौते किए थे उसके तहत बातचीत हम करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने रवैये को कोई बदलाव नहीं किया है और ये जो बातचीत है ये द्विपक्षीय बातचीत है। इस द्विपक्षीय बातचीत में तीसरे पक्ष का कोई भी योगदान नहीं होगा और हम इन शर्तों से आगे नहीं हटना चाहते जी, इसलिए हम ये बातचीत आगे नहीं करेंगे। ये विकास स्वरूप हैं जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। तो इस समय की बड़ी खबर ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत होने वाली थी वो नहीं होगी।
बीबीसी इंडिया बोल।
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया कि जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों और अन्य उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य है। सवाल यह है कि आखिरकार सरकारी स्कूलों में ऐसी क्या कमी है जो उच्च पदों पर बैठे लोग अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाना चाहते। सरकारी स्कूलों में बच्चों को न पढ़ाने के पीछे उसकी गुणवत्ता वजह है या फिर स्टेटस सिंबल का सवाल है। इस शनिवार बीबीसी इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वोटिंग को अनिवार्य करने के फैसले पर रोक लगा दी है। आज दिए गए आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनावों में अनिवार्य वोटिंग पर रोक लगा दी। और जानकारी के लिए मैंने बात की अपने सहयोगी अंकुर जैन से।
गुजरात सरकार के उस निर्देश को जिस पर उन्होंने इस चीज पर मोहर लगाई थी कि गुजरात में आगामी जो म्युनिसिपल और सिविक पोल हैं इसमें मतदान को कंपलसरी किया जाए और जो लोग मतदान नहीं करते उन पर 100 रुपए का फाइन लगाया जाए, उस आदेश पर स्टे लगा दिया है। स्टे तब लगा जब एक वकील ने इस पर याचिका दायर की कि जो राइट टू वोट है उसमें वोट को ड्यूटी नहीं बताया गया है और राज्य सरकार इस प्रकार का अमेंडमेंट खुद से नहीं कर सकती इसे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसे पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि जो राइट टू वोट है उसमें कहीं भी ड्यूटी ऑफ वोटिंग नहीं आता, इस वजह से आप मतदान को कंपलसरी नहीं बना सकते हैं और इस पर अभी स्टे लगा दिया है।
अंकुर, लेकिन राज्य सरकार ने इस तरह का फैसला क्यों किया था और फिर क्यों इसे मतदान को अनिवार्य किया गया था और शायद ये भारत का पहला राज्य ऐसा बना था?
बिल्कुल, 2009 में गुजरात भारत का पहला राज्य बना था जब गुजरात असेंबली ने कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रपोजल फ्लोट किया था जिसपे गुजरात असेंबली ने मोहर लगाई थी और इसे पास करके उस वक्त के गवर्नर को भेजा गया था। 2 बार इसे गवर्नर डॉक्टर कमला ने बर्खास्त किया, इसे मंजूर नहीं किया। उसके बाद जब गवर्नर बदले गए 2014 में तब गवर्नर ने इस प्रपोजल को माना और अभी कुछ महीनों पहले ही जून में गुजरात गवर्नमेंट ने इसे कंपलसरी बनाते हुए ये कहा कि जो भी आने वाले चुनाव में जो भी वोट नहीं करेगा उस पर 100 रुपए का फाइन लिया जाएगा। तो गुजरात जब ये पहला राज्य बना तब इसकी कड़ी निंदा की गई थी, अपोजिशन पार्टीज ने इस निर्णय को कड़ा विरोध किया था और ये पास भी असेंबली में जब हुआ था जब इसका असेंबली में विरोध नहीं था लेकिन कांग्रेस के जो एमएलए थे इन लोगों ने वॉकआउट किया था और उसके बाद ये असेंबली में पास हुआ था।
ये थे हमारे सहयोगी अंकुर जैन। जिस किसी ने भी पाकिस्तान के कव्वाल नुसरत फतेह अली खां को सुना है उनका दीवाना बन गया। उनकी गायकी, उनकी अदा, सब कुछ उन्हें बेमिसाल बनाती है, उन्हें लीक से हटकर खड़ा कर देती है। 16 अगस्त को उनकी बरसी थी। चलिए हम भी याद करते हैं नुसरत फतेह अली खान को आज की विवेचना में। शहंशाह कव्वाली नुसरत फतेह अली खान की यह रिकॉर्डिंग उस लाइव प्रोग्राम की है जिसे उन्होंने 1986 में पेबल मिल बर्मिंघम में बीबीसी के लिए परफॉर्म किया था। आज भी जैसे ही कानों में नुसरत फतेह अली खां की आवाज पड़ती है हर कोई, चाहे उसमें संगीत की समझ हो या ना हो, श्रोता मंत्र मुग्ध होकर गीत के बोलों में खो जाता है।
दमाली अली,
उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका हाथों को हिलाना, चेहरे पर संजीदगी का भाव, संगीत का उम्दा प्रयोग, शब्दों की शानदार रवानगी, उसका खनकपन, सब कुछ हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाने पर मजबूर करता है।
ख्वातीनों हजरात, हम आपको इस महफिल कव्वाली में खुशामदीद कहते हैं। आज से करीब करीब आधी सदी पहले की बात है, जब जालंधर के दो अजीम कव्वालों उस्ताद फतेह अली खां साहब और उस्ताद मुबारक अली खां साहब ने कव्वाली के फ़न को ताल और थाप का एक नया निखरा हुआ रूप दिया। उसी घराने के चश्मो चराग उस्ताद नुसरत फतेह अली खां साहब आज हमारे सामने मौजूद हैं।
जिस नुसरत फतेह अली खां को हम जानते हैं वो आवाज और तान के जादूगर हैं, लेकिन बचपन में वो गायकी नहीं बल्कि तबले का अभ्यास किया करते थे। पाकिस्तान बनने के साल भर बाद नुसरत फतेह अली खां का जन्म पंजाब के लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद में हुआ, यानी 13 अक्टूबर 1948 को। घराना था कव्वालों का। पिता उस्ताद फतेह अली खां, जो खुद भी मशहूर कव्वाल थे। उस्ताद पिता ने बालक नुसरत को पहले तबला सिखाना शुरू किया, लेकिन बाद में नुसरत ने मौसिकी को ही अपना मुकाम बना लिया। हालांकि नुसरत परंपरागत तरीके से कव्वाली तो लंबे अरसे से गा रहे थे, मगर नुसरत के लिए अभी दुनिया में शोहरत बटोरने की शुरुआत होनी बाकी थी। वो साल था 1985। लंदन में वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक आर्ट एंड डांस फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इसमें उन्होंने पीटर गैब्रियल के साथ अपना म्यूजिक दुनिया के सामने परोस दिया। जो लोग पंजाबी, उर्दू और कव्वाली को समझ भी नहीं पाते थे, लेकिन उनकी आवाज और अंदाज के दीवाने बन गए। 1988 में जब पीटर गैब्रियल हॉलीवुड फिल्म लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट का साउंड ट्रैक बना रहे थे, तो उन्होंने उस दृश्य के लिए नुसरत के आलाप का इस्तेमाल किया, जिसमें ईसा मसीह सूली को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस दर्द के लिए शायद नुसरत से बेहतर और कोई नहीं हो सकता था।
उनके साथ काम करना शानदार रहा। वो हमेशा से ही बेहद रचनात्मक रहे हैं। वो कब क्या कुछ नया कर देंगे कोई नहीं जानता। उनके पास टाइमिंग है, सेंस है और म्यूजिक की बेहतरीन समझ है।
इसके बाद तो नुसरत ने पीटर गैब्रियल के साथ मिलकर दुनिया के सामने पश्चिम और पूरब की जुगलबंदी पेश कर दी। सुरों के ऐसे तार छिड़े कि क्या ब्रिटेन, क्या यूरोप, क्या जापान, क्या अमेरिका, पूरी दुनिया में नुसरत के प्रशंसकों की बाढ़ आ गई। जिन जिन देशों में नुसरत के रॉक कॉन्सर्ट हुए, नुसरत फतेह अली खान ने अपनी कव्वाली का रंग जमाया, लोग झूम उठे, नाच उठे। नुसरत फतेह अली खान ने एक साक्षात्कार में कहा था,
हमारी नौजवान नस्ल जो है उनको हमारे कल्चर का बिल्कुल नहीं पता। उनको इस तरफ लाने के लिए एक तजुर्बा ये मेरे जहन में बड़ी देर का था, क्योंकि जिन्होंने इंग्लिश म्यूजिक को जो पसंद करते वेस्टर्न म्यूजिक को, उनको तो अगर हम अपने तरीके से सुनाएंगे तो वो तो उनके लिए तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने एक ये तजर्बा किया कि जो साज हैं, इंस्ट्रूमेंट जो वेस्टर्न, उसको इस्तेमाल करके अब अपना क्लासिकल स्टाइल उसमें समोया जाए। पुरानी धुनें चली आ रही हैं जो मसलन पहाड़ी या भैरवी की, इनको सुनाया जाए, इसको एक नया तजुर्बा कहा जा सकता है। मगर ये इसको कव्वाली नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि कव्वाली का एक खास मकाम है, मगर इसको मैंने आवाज़ को अपने चीज को रिदम से इर्द गिर्द के माहौल को देखा कि लोग क्या चाहते हैं। पहले मैंने तजर्बा जो है ना वो पीटर गैब्रियल के साथ किया है।
पूर्व और पश्चिम के अलौकिक फ्यूजन में उन्होंने अपना पंजाबीपन और सूफियाना अंदाज नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के कराची में अबू मोहम्मद कव्वाल हैं। कहते हैं दुनिया भर में उनकी पहचान और उनकी लोकप्रियता की वजह पश्चिमी संगीत के साथ उनका मेल मिलाप था।
एक अच्छे कव्वाल के लिए क्लासिकल की तालीम होना, ठुमरी दादरे की तालीम होना, कलाम की तालीम होना बहुत जरूरी है। कव्वाली नो डाउट के उनकी पहचान रही है, मगर जो एकदम वो पीक पे गए, फ्यूज को इस्तेमाल किया और फ्यूज किया, उनकी शोहरत का सबब ज्यादा बना बनिस्बत कव्वाली।
नुसरत के जादू ने सरहदें पार की। इस पार भारत में भी उनके गीत और कव्वालियां सिर चढ़कर बोलने लगी। भारत के फिल्मी गीतों की पहचान भी नुसरत बनने लगे थे। मेरा पिया घर आया, पिया रे तेरे बिन प्यार नहीं करना, सांसों की माला पे और भी न जाने कितने ऐसे गीत गजल हैं, कव्वालियां हैं जो दुनिया भर का संगीत खुद में समेटे हुए हैं। अपने एल्बम से भारत में धूम मचाने के बाद नुसरत फतेह अली खां को जब बॉलीवुड में फिल्म का न्योता मिला तो उन्होंने शायर के मामले में अपनी पसंद साफ कर दी कि वो काम करेंगे तो सिर्फ बेहतरीन शायर जावेद अख्तर के साथ। दो मुल्कों के बड़े फनकारों का संगम हुआ, एल्बम निकला संगम। संगम का सबसे हिट गीत था आफरीन आफरीन। बोल लिखे जावेद साहब ने और अपनी धुन व गायकी से नुसरत साहब ने इस गीत को ऐसी रवानगी दी कि गीत खत्म होने के बाद भी इसका नशा नहीं टूटता। जावेद अख्तर याद करते हैं,
बम्बई से थोड़ी दूर पे एक जगह है मड आइलैंड, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा कॉटेज है चिम्बी का, वहाँ हम जाके ठहरे, वहाँ काम कर रहे थे, समंदर के किनारे है, और तीन चार दिन कोई नहीं आया, सिर्फ हम अपने काम में थे, बस खाना खा लेते थे फिर बैठ जाते थे, काम करते थे समंदर के सामने। और मुझे इस तीन चार दिनों की एसोसिएशन में महसूस हुआ कि इतनी देर में इस शख्स के मुंह से ना किसी के लिए कोई बुराई निकली है, ना इसने किसी दूसरे मौजू पे कोई बात की है, ये अपनी म्यूजिक में पूरी तरह खोया हुआ है। ये या मेरे शेर सुनता है उस पर रिएक्ट करता है ये इंसान, या अपने सुरों पे करता है, इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट है, ये कितनी साधना की बात है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये जो इतने अजीम फनकार के साथ ये दो तीन दिन गुजारे हैं तो मेरे अंदर से मेरी रूह धुल गई।
नुसरत दुनिया भर में घूमे और अपनी मौसिकी से लोगों का दिल अपने नाम करते रहे। खाने के बेहद शौकीन नुसरत ने जी भर कर खाया और जी भर कर गाया। सिर्फ 48 साल की उम्र में नुसरत फतेह अली खान ने जब 16 अगस्त 2007 को इस दुनिया से विदा ली, विश्व संगीत में एक गहरा शोक छा गया। पश्चिमी देशों ने शोक में डूब कर कहा, पाकिस्तान ने दुनिया को जो अनमोल रत्न दिया था आज हम उसे खो बैठे हैं। जिस समय नुसरत फतेह अली खां का नाम दुनिया में सिर चढ़कर बोल रहा था, उस समय उनके भतीजे राहत फतेह अली खान उनसे गायन की बारीकियां सीख रहे थे। जब भी नुसरत कहीं प्रोग्राम पेश करते, राहत का काम सिर्फ आलाप देना होता था। राहत बताते हैं कि किस तरह से उन्हें नुसरत गाने की या कव्वालियां की बारीकियां सिखाते थे।
स्टेज पे तो मुझे डांट पड़ती ही रहती होती थी और वो बोला नहीं करते थे, बस उनका आंख का एक इशारा होता था, वो तो वो मैं समझ जाता था कि गलती हो गई है। उन्होंने एक गज़ल की कंपोजिशन की थी, वो मैं सही तरह से जगह नहीं कह पा रहा था, तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझे समझाया, फिर उसके बाद मुझे कहा कि चलो अब पहले इसको आप कीबोर्ड पे बजाओ। पहले कीबोर्ड से जब बजा ली मैंने, कहते याद होगी, हो गई, अब गाओ, अब फिर ना गाई जाए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी तरफ से ना गाया करो। तो ये एक ये ऐसे मुझे बहुत डांटे पड़े।
सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं टीका नाम।
अरशद महमूद नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट कराची में डायरेक्टर हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से उनके एल्बम पाकिस्तान में धूम मचाया करते थे।
जिस तरह HMV थी इंडिया में, उसी तरह यहाँ EMI पाकिस्तान थी, HMV पाकिस्तान के नाम से। मैं उस कंपनी में काम करता था जब उन्होंने पहली उनकी कव्वाली फैसलाबाद में रिकॉर्ड हुई, तो बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, बहुत लोगों ने कहा कि इसमें बहुत टैलेंट है। और फिर हमारी कंपनी ने भी तकरीबन 4 घंटे की रिकॉर्डिंग उनकी इनिशियली की थी। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो तमाम चीज़ें हुई और फिर वो मकबूल भी हुई आवाम में।
एक इंसान के तौर पर नुसरत कैसे थे और उन्हें क्या कभी गुस्सा भी आता था? राहत फतेह अली खां बताते हैं।
जो बहुत गुस्से वाली कोई बात है और जिस पे रियली एक बंदा को गुस्सा आना ही चाहिए, तब उनको बहुत आता था। तो अदरवाइज नॉर्मल जो माइंड करने वाली बातें होती थी, ना तो उन्होंने कभी किसी सिंगर की, कभी मौसीकार किसी की, ना किसी एक्टर की, ना एक्ट्रेस की, ना किसी भी अपने साथ जुड़े हुए, उनकी उन्होंने कभी बुराई नहीं की। तो अगर उनके बारे में अगर कोई कंट्रोवर्सी आती थी, वो ध्यान ही नहीं देते थे, सिर्फ अपना काम करते थे।
ओ लाल मेरी पत्ती रखियो बाला झूलेलाल, ओ लाल मेरी पत्ती रखियो बाला झूलेलाल, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर शाबाज कलंदर सखी शाबाज।
आज नुसरत फतेह अली खां के रिकॉर्ड आपको दुनिया के किसी भी नामी म्यूजिक शॉप में मिल जाएंगे। इनके चाहने वालों की आज भी कोई कमी नहीं, क्योंकि जब ये लंबी तान लेकर गाते थे तो मानो दुनिया ठहर जाती थी। नुसरत फतेह अली खां पर थी ये हमारी विवेचना। और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये बातचीत होने वाली है, ये कॉल ऑफ कर दी गई है, यानी कि रद्द कर दी गई। लेकिन अभी अभी इसमें एक संशोधन, एक नई खबर सामने आ रही है। फैसल मोहम्मद मौजूद हैं, क्या ये जो मीटिंग है ये कॉल ऑफ हुई है या नहीं हुई है?
नहीं मोहनलाल, जो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं विकास स्वरूप, उनसे मेरी बात हुई है, मैंने फ़ोन किया था उनको, उन्होंने कहा नहीं बातचीत रद्द नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कुछ बातें ज़रूर की। उन्होंने कहा, उनका कहना था कि जो साझा बयान जो है जारी हुआ था उफा में, उसमें ये साफ कहा गया था कि जो बातचीत होगी वो सिर्फ आतंकवाद से जो है संबंधित होगी, और उसके बाद जो है दोनों प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था। साथ ही साथ जो है पाकिस्तान ने जो ये हुर्रियत नेताओं को बुलाने पर जो अपनी ज़िद जो उन्होंने जो है की हुई है, जिस पर पाकिस्तान ने, भारत ने जो कल सलाह दी थी कि हुर्रियत नेताओं से ना मिले, पाकिस्तान ने कहा कि वो किससे मिलेंगे या ना मिलेंगे ये भारत तय नहीं कर सकता, ये जो है उससे डिपार्चर है जो तय हुआ था। और जो बातचीत हो सकती है वो शांति से और द्विपक्षीय स्तर पर ही हो सकती है, एक तरफा शांति और उसमें हेर फेर और आगे बढ़ाने जो किया जाएगा उसमें रास्ता जो है वो आगे बढ़ने का नहीं है।
यानी कि हाँ, ये विकास स्वरूप का जो रिटन स्टेटमेंट है, लेकिन पूरे भारत के मीडिया चैनल्स में ये खबर अचानक ब्रेक हुई और चलने लगी कि भारत ने बातचीत कॉल ऑफ कर ली, ये कहाँ से शुरू हो गया?
ये ऐसा हुआ कि समाचार एजेंसी, जो भारतीय समाचार एजेंसी है PTI, उसने खबर दी कि वो कॉल ऑफ हो गई है, वो बातचीत जो है सुरक्षा सलाहकारों के बीच होने वाली है, और इसी बीच जो है वो विकास स्वरूप जो है वो टेलीविजन पर वक्तव्य बयान देने के लिए आ गए। जब वो बयान देने के लिए आए कि लोगों को लगा कि ये लगता है बातचीत पूछोगे और उसी को बयान देंगे, और पूरी बयान शायद सुना नहीं लोगों ने, और जिसमें
लेकिन लेकिन इस बयान में संदेश जरूर खड़ा है,
इस बयान में संदेश जरूर है। ये एक तरह से दोनों एक दूसरे पर दबाव की जो है वो,
लेकिन लेकिन आपने खुद उनसे विकास स्वरूप से बात करके इस चीज को कन्फर्म किया। तो फिलहाल खबर ये कि हमारी बातचीत यानी कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत रद्द नहीं हुई है। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।